नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। घरेलू शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरते हुए मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। विदेशी पूंजी प्रवाह और वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख के बीच बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन अंत में ये 246.57 अंक की बढ़त के साथ 54,767.62 अंक पर बंद हुआ। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स ऊंचे में 54,817.52 अंक तक गया और नीचे में 54,232.82 अंक तक आया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 62.05 अंक की बढ़त के साथ 16,340.55 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में नेस्ले इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज और एशियन पेंट्स शामिल हैं। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में, जबकि जापान का निक्की तथा चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में रहे। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और गृह मंत्रालय ने भारत की नागरिकता छोड़ने वालों का एक आंकड़ा उपलब्ध करवाया है। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हर वर्ष औसतन करीब 1.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। वहीं भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की विदेशी देशों में पहली पसंद अमेरिका है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि वर्ष 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है और विदेश में बस गए, जबकि वर्ष 2020 में 85,256 लोगों ने और वर्ष 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देशों में बस गए। इससे पता चलता है कि 2020 की तुलना में 2021 में दोगुने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। बता दें कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी आई थी, वहीं पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान में भी बसने वालों की तादाद बढ़ी है। वर्ष 2019 में एक भी भारतीय नागरिक ने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली थी, जबकि वर्ष 2020 में 7 भारतीय नागरिकों ने पाकिस्तान की नागरिकता ली। वर्ष 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 41 पर पहुँच गया। वहीं वर्ष 2021 में एक व्यक्ति ने बांग्लादेश की नागरिकता ली। भारत और इसराइल की प्रमुख कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक एल्युमिनियम एयर बैटरी के उत्पादन को लेकर हाथ मिलाया है। इन कंपनियों के बीच इस साझेदारी से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ेगा और चार्जिंग की बुनियादी ढांचे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही बैटरी का आयात भी कम होगा और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बड़ा समर्थन भी मिलेगा। इन कंपनियों की तरफ से सोमवार को जारी संयुक्त बयान के अनुसार आदित्य बिड़ला समूह की धातु कंपनी हिंडाल्को ने इसराइल की धातु एयर बैटरी तकनीक कंपनी फिनर्जी और आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। आईओसी फिनर्जी दरअसल आईओसी और फिनर्जी का संयुक्त उद्यम है। ये समझौता एल्यूमिनियम एयर बैटरी तैयार करने को लेकर किया गया है। एल्युमिनियम एयर बैटरी को फिनर्जी ने तैयार किया है। ये बैटरी वजन में हल्की होती है और इसमें ऊर्जा क्षमता अधिक होती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अन्य बैटरी की तुलना में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति को लेकर आंशिक उतार चढ़ाव का भारतीय ऊर्जा बाजार पर खासा असर पड़ता है। रूस कोयला, तेल और गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और दुनिया भर के बाजारों में रोजाना 8 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति करता है। रूस सिर्फ पाइपलाइन से 210 BCM प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है। रूस दुनिया के 10 चोटी के कोयला उत्पादकों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूसी तेल, गैस और कोयले की थोड़ी सी भी कमी या आपूर्ति बाधित होने का असर भारतीय ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ता है और ये असर कीमत के साथ साथ मात्रा के रूप में भी होता है। कच्चा तेल, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का संकट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में खपत पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे में आपूर्ति में थोड़ी सी कमी से भारतीय बाजार लड़खड़ाने लगते हैं। रूस द्वारा 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक उत्पादन में कमी के असर को थोड़े समय तक तो संभाला जा सकता है, पर आपूर्ति में ज़्यादा कमी के प्रभाव को संभालने के लिए आपूर्ति मजबूत करना होता है। रूस से आपूर्ति में अनुमानित कमी लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। रियल्टी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ ने खुदरा खपत में तेज सुधार से उत्साहित होकर नए शॉपिंग मॉल के विकास की दिशा में शुरू किया है और इसकी अगले 5 वर्षों में खुदरा पोर्टफोलियो को दोगुना करने की योजना है। कंपनी के चेयरमैन राजीव सिंह ने शेयरधारकों को दिए गए एक संदेश में इस योजना का जिक्र किया है। वर्तमान में डीएलएफ के पास 42 लाख वर्ग फुट का खुदरा कारोबार है, जिसमें 8 मॉल और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं। ये मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर में स्थित हैं। सिंह ने कहा कि कंपनी आवास और कार्यालय परियोजनाओं के विकास को भी बढ़ाएगी। उन्होंने कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट में कहा, कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी प्रमुख मापदंडों में एक बेहतर प्रदर्शन देते हुए मजबूती के साथ उभरी है। उन्होंने कहा, हम किराए के कारोबार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जारी रखे हुए हैं। गुरुग्राम, चेन्नई और नोएडा समेत कई भौगोलिक क्षेत्रों में सुरक्षित एवं टिकाऊ कार्यस्थलों को विकसित करके कार्यालय पोर्टफोलियो को मजबूत करने तथा विकसित करने के लिए वाजिब पूंजी लगा रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।